नमस्कार भारत, 6 अप्रैल दिन बुधवार, मैं हूं संदीप सोनी। पनामा लीक्स के बाद पहला झटका आइसलैंड के प्रधानमंत्री को लगा, देना पड़ा इस्तीफा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, टैक्स चोरी रोकने के लिए खामियों को दूर करना होगा।
There are loopholes that only wealthy individuals and powerful corporations have access to. They have access to offshore accounts and they are gaming the system.
भारत प्रशासित कश्मीर के श्रीनगर में NIT छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
3 दिन से हमारे यहाँ के लड़कों पर अटैक हो रहा है जो कश्मीरी लड़के कर रहे हैं। हमने यहाँ पे भारत का झंडा बना करके हमने भारत माता की जय बोलना शुरू किया, तो उन्होंने JK पुलिस को बुला ली।
खेल की खबरें और अखबारों की सुर्खियाँ भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार, हरिता कांडपाल से। पनामा पेपर लीक्स में नाम आने के बाद आइसलैंड के प्रधानमंत्री सिगमंडर गुनलॉगसॉन ने इस्तीफा दे दिया है। पनामा की मोसाक फोंसेका कंपनी के दस्तावेज में फीफा के अध्यक्ष ज्ञानी इन्फेंटिनो का भी नाम आया है। उनका नाम रिश्वत लेने वाले व्यापारी को कॉन्ट्रैक्ट देने के मामले में सामने आया है। इस पर अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कहा है कि टैक्स चोरी एक वैश्विक समस्या है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगान ने कहा है कि चरमपंथ का समर्थन करने वाले लोगों की नागरिकता छीन ली जानी चाहिए। अंकारा में टीवी पर एक भाषण प्रसारित किया गया जिसमें एर्दोगान ने कहा कि चरमपंथियों के साथ सरकार कोई बात नहीं करना चाहती। एर्दोगान ने कल ही कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के साथ बातचीत की संभावना से इनकार कर दिया था। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दाउतोग्लू ने कहा कि फिलहाल सरकार PKK समर्थकों की नागरिकता छीनने के बारे में नहीं सोच रही है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत ने कीनिया के उपराष्ट्रपति विलियम रूटो और एक पत्रकार पर मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों को खारिज कर दिया है। जज ने कहा कि ये चश्मदीदों के हस्तक्षेप और असहनशील राजनीतिक दखलअंदाजी का मामला था। हालांकि दोनों को बरी नहीं किया गया है। उन पर 2007 में चुनाव के बाद एक हफ्ते तक चली हिंसा में करीब 200 लोगों की मौत से जुड़े मामले में मुकदमा चलाया जा रहा था। ह्यूमन राइट्स वॉच से जुड़ी एक वकील एलिजाबेथ इवेंसन ने कहा,
For victims of the post-election violence that took place in Kenya in 2007 and 2008, victims of killings, victims who were displaced from their homes.
चुनाव के बाद जिन लोगों की 2007 और 2008 में हिंसा में मौत हो गई थी और जिन्हें अपने घर छोड़ने पड़े थे, उनके लिए न्याय की आशा नहीं रह गई है, क्योंकि सरकार ने कीनिया में मुकदमा चलाने के बार बार किए गए वादे को पूरा नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत ने आखिरी रास्ते के तौर पर मुकदमा अपने हाथ में लिया था, लेकिन ये काफी मुश्किल है और अब मामले को खारिज कर दिया गया है। ये थे एलिजाबेथ इवेंसन के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। नाइजीरिया में सबसे वरिष्ठ नेता और सीनेट के अध्यक्ष बुकोला साराकी के खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया है। उन पर चोरी की रकम से प्रॉपर्टी खरीदने और अपनी संपत्ति सार्वजनिक नहीं करने का आरोप है। ये आरोप उस समय के हैं जब वो एक क्षेत्रीय गवर्नर थे। ये भी कहा जा रहा है कि उनका नाम पनामा पेपर लीक्स में सामने आया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने विदेश में अपनी 4 संपत्तियों के बारे में जानकारी छिपाई है। लीबिया में स्वघोषित सरकार नेशनल साल्वेशन गवर्नमेंट ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार को सत्ता सौंप दी है। त्रिपोली में 2014 से इस्लामिक समूह सत्ता पर काबिज है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं थी। BBC समाचार।
BBC हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। पनामा लीक्स का दायरा हर दिन बढ़ता जा रहा है और इसका पहला झटका आइसलैंड के प्रधानमंत्री को लगा है, जिन्हें अपने ही देश में भारी विरोध प्रदर्शन की वजह से इस्तीफा देना पड़ा है। वहीं ब्रितानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को पनामा लीक्स में अपने पिता का नाम आने पर सफाई देनी पड़ी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस बात पर चिंता जताई है कि उनके अपने देश में अमेरिका में टैक्स चोरी रोकने की व्यवस्था में कई तरह की खामियां हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। BBC संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए हरिता कांडपाल से।
पनामा की कानूनी फर्म मोसाक फोंसेका के लाखों गोपनीय दस्तावेज के लीक होने से मचे हड़कंप का सबसे पहला और बड़ा असर आइसलैंड में देखने को मिला। पनामा पेपर लीक्स में नाम आने के बाद आइसलैंड के प्रधानमंत्री का जबरदस्त विरोध हुआ और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दस्तावेज के मुताबिक प्रधानमंत्री सिगमंडर गुनलॉगसन और उनकी पत्नी की एक कंपनी का संबंध मोसाक फोंसेका से था। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद भी विरोध प्रदर्शन का सिलसिला आइसलैंड में जारी है। पनामा पेपर लीक्स में आइसलैंड के वित्त मंत्री ब्यानी बेनेडिक्सन का भी नाम आया है। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा काफी नहीं है।
I'm here because the government still hasn't resigned, because the finance minister and the interior minister are still...
प्रदर्शन में शामिल एल्फार पेटरसन ने कहा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि वित्त मंत्री और आंतरिक मंत्री अभी भी संसद में बैठे हुए हैं। वो इस्तीफा देने से मना कर रहे हैं। उन दोनों के विदेश में खाते हैं। ये थे प्रदर्शनकारी के शब्द। वहीं आइसलैंड के वित्त मंत्री ब्यानी बेनेडिक्सन का कहना है,
það er örugglega alltaf erfitt að fullyrða eitthvað það svona í miðjum storminum.
जब तूफान जारी है तो कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आइसलैंड की साख को बट्टा लगा है तो हमारे पास उसे वापस पाने का मौका भी है। ब्यानी बेनेडिक्सन के शब्द। पनामा की कानूनी फर्म मोसाक फोंसेका के 40 साल के कामकाज के दस्तावेज एक जर्मन अखबार शेडुश जेटुंग के जरिए खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय संघ को मिले। दस्तावेजों में ये साफ होता है कि मोसाक फोंसेका कैसे अपने क्लाइंट के काले धन को वैध बनाने, प्रतिबंधों से बचने और टैक्स बचाने में मदद करती है। इन दस्तावेजों में कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के परिवार और करीबी लोगों के नाम सामने आए हैं। पनामा पेपर लीक्स के बाद अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने टैक्स चोरी से निपटने के लिए ज्यादा कोशिशें करने की जरूरत पर जोर दिया है।
Here in the United States, there are loopholes that only wealthy individuals and powerful corporations have access to. They have access to offshore accounts.
अमेरिका में कर प्रणाली से बचने के कई तरीके हैं जिन पर सिर्फ अमीरों और शक्तिशाली व्यापार संस्थानों की ही पहुंच है। उनकी पहुंच विदेशी खातों तक भी है और वो इस व्यवस्था से खेल रहे हैं। ये सब मध्यवर्ग की कीमत पर हो रहा है, क्योंकि जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई तो कहीं ना कहीं से करनी ही होती है। इसका मतलब है कि हम स्कूलों, कॉलेजों की शिक्षा, सड़कों और आधारभूत ढांचों पर जरूरी खर्च नहीं कर पाते हैं। बराक ओबामा के शब्द। पनामा पेपर लीक्स की धमक पाकिस्तान, चीन, रूस, भारत और ब्रिटेन के अलावा कई देशों में दिख रही है। पनामा पेपर लीक्स ने दुनिया भर में काले धन को वैध बनाने, धन छिपाने के लिए टैक्स पनागाहों के इस्तेमाल और प्रतिबंधों से बचने के तरीकों का कच्चा चिट्ठा तो खोल ही दिया है और ये भी संकेत दिए हैं कि इसका जाल कितना फैला हुआ है।
पनामा लीक्स का बढ़ता दायरा रिपोर्ट सुना रही थी हरिता कांडपाल।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
भारत प्रशासित कश्मीर के श्रीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रदर्शनकारी छात्रों पर कल पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। यहां पढ़ने वाले अधिकतर छात्र भारत के अन्य राज्यों के हैं, जिनका स्थानीय छात्रों के साथ अक्सर तनाव रहता है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से टेलीफोन पर बात की है। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
पिछले हफ्ते आईसीसी सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद जब एनआईटी में तनाव पैदा हुआ तो अधिकारियों ने क्लास वर्क स्थगित किया, जो सोमवार को दोबारा शुरू हुआ था। लेकिन कल जब सैकड़ों छात्र प्रदर्शन करने के लिए बाहर निकले तो पुलिस ने इनकार लाठीचार्ज किया। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि छात्रों ने पुलिस अफसरों के साथ दुर्व्यवहार किया और हिंसा की, जिससे सरकारी जायदाद को नुकसान पहुंचा। लेकिन छात्रों का कहना है कि पुलिस ने स्थानीय छात्रों के कहने पर इनकी मारपीट की।
सर, उसके पहले तीन दिन से हमारे यहाँ के लड़कों पर अटैक हो रहा है, जो कश्मीरी लड़के कर रहे हैं। वो हर बार तीन दिन से अश्योरेंस दे रहे थे, इसलिए हमने कहा नहीं सर, हम अश्योरेंस नहीं मानेंगे। फिर से हमने आपस में इकट्ठे हुए, हमने यहाँ पे भारत का झंडा बनाया, भारत का झंडा बना करके हमने भारत माता की जय बोलना शुरू किया। तो उन्होंने जेके पुलिस को बुला ली सर।
एनआईटी के रजिस्ट्रार फयाज अहमद कहते हैं कि कैंपस में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस को तलब करना पड़ा।
अल्टीमेटली व्हेन वी फाउंड दैट इफ वी डोंट टेक सम मेजर्स, देयर कैन बी अ सिचुएशन वर्सनिंग एंड दैट मे लीड टू मच मोर प्रॉब्लम्स।
एनआईटी में भारत के विभिन्न राज्यों से करीब 2000 छात्र शिक्षा प्राप्ति के लिए रहते हैं, जबकि कश्मीरियों की संख्या बहुत ही कम है। अक्सर क्रिकेट मैच के दौरान यहां तनाव होता है। छात्रों की मांग है कि एनआईटी कैंपस में अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ का कैंप लगाया जाए, ताकि इन्हें कोई हानि न पहुंचे। पुलिस का कहना है कि गृह मंत्रालय से आदेश आ जाए तो इस पर काम हो सकता है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवाएंगे हिंदी फिल्मों में कश्मीरी लोक संगीत पर एक रिपोर्ट, लेकिन पहले बात उस खबर की जिसका संबंध भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से है। पाकिस्तान के एक अखबार में सूत्रों के हवाले से खबर खबर छपी कि पाकिस्तान के जांच दल ने पठानकोट हमले पर भारत की ओर से जो सबूत दिए गए थे उनको नकार दिया है। भारतीय मीडिया और राजनीतिक हलकों में इस खबर पर कल खूब चर्चा हुई। भारत सरकार पर तमाम तरह के आरोप भी लगे हैं। पूरा ब्यौरा सुनिए निखिल रंजन से।
पाकिस्तान के अखबार में सूत्रों के हवाले से छपी खबर के बाद भारत की मीडिया में कल पूरे दिन हलचल मची रही। इस अखबार का दावा है कि पाकिस्तान से भारत आए संयुक्त जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय जांच एजेंसियों के दिए सबूतों को नकार दिया है। अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी जांच दल ने पठानकोट चरमपंथी हमले को भारतीय सेना की करतूत बताया है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला।
पूरे 65 साल के भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के सामने इस तरह से घुटने नहीं टेके जितने श्री नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेके हैं पाकिस्तान के सामने। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए गए थे। 2 जनवरी को पठानकोट का हमला हो जाता है। नवाज शरीफ के साथ प्रधानमंत्री जी की क्या डील हुई थी अब ये सारा देश जानना चाह रहा है। दोनों के बीच में क्या गुफ्तगू हुई थी, क्या बातचीत हुई थी, सारा देश जानना चाह रहा है।
केजरीवाल तभी से केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं जब ये बात पता चली कि भारत आए जांच दल में एक सदस्य पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का भी है। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के सुर में सुर मिलाया है और केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी,
भारत में शीर्ष स्थानों पर बैठे लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान इस बात को कबूल कर लेगा कि पठानकोट या गुरदासपुर में उनका हाथ है, तो वो बिल्कुल ही यहाँ तो ख्याली दुनिया में रहते हैं।
उधर BJP का कहना है कि भारत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। BJP प्रवक्ता नलिन कोहली,
नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम गिल्टी लोग जो भी हैं इसके पीछे उनको हम एक्शन लेना चाहते हैं उनके खिलाफ। अब ये तो बात पाकिस्तान को सिद्ध करना है, उनकी टीम है, यदि पाकिस्तान नहीं करेंगे तो अपने आप ही एक्सपोज हो जाएंगे। इसमें भारत की क्या कमी हुई है मुझे समझ नहीं आ रहा।
BJP का ये भी कहना है कि सूत्रों से मिली खबर पर बिना पुख्ता आधार के हंगामा उठाया जा रहा है। BJP ने आरोप लगाया है कि पंजाब के चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी बयानबाजी कर रही है। पाकिस्तानी जांच दल ने वापस जाकर अपनी रिपोर्ट पाकिस्तान सरकार को सौंप दी है, लेकिन सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी कोई बयान नहीं दिया गया है।
रिपोर्ट सुना रहे थे निखिल रंजन। मैंने अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद फ़ोन करके स्थानीय पत्रकार एहतशामुल हक से बात की और पूछा कि पाकिस्तान से उड़ी जिस खबर पर भारत में इतना हो हल्ला हुआ उस खबर पर खुद पाकिस्तान में कितनी चर्चा हुई है।
लेकिन यहाँ पे कोई क्रेडिबल मीडिया की तरफ से इस तरह की कोई चीज नहीं है। एक आध किसी अखबार या कम अशात में छपने वाला कोई अखबार मेरी नज़र से तो कोई ऐसी चीज गुजरी नहीं है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना प्रिंट मीडिया में ये खबर कहीं की है कि जी हुकूमत पाकिस्तान कहती है या हुकूमत कहता है कि जी पठानकोट पे हमला जो खुद सरकार ने कराया था। ये इसमें कतई तौर पे हुकूमत की तरफ से कोई स्पोक्समैन नहीं बात कर रहा, हुकूमत से प्राइवेटली कोई सोर्सेज के जरिए भी किसी अखबार में, उर्दू अखबार में, अंग्रेजी अखबार में इस तरह की कोई खबर नहीं है। तो जनरली इसको तो कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं ना को मान रहा है।
एहतशामुल हक साहब, ये भी बताएं कि क्या वजह लगती है कि एक अखबार में खबर है आई थी जिस पर भारत में इतना हो हल्ला हो गया, लेकिन पाकिस्तान के बाकी मीडिया के हिस्से ने इस खबर को उतनी तवज्जो नहीं दी, क्या लगता है क्या वजह है इसकी?
वजह यह है कि इस खबर की सदाकत कोई नहीं है, इसके पीछे कोई सबूत वाली बात नहीं है। कोई गवर्नमेंट का स्पोक्समैन, कोई हाई ऑफिशियल फॉरन ऑफिस की तरफ से या फॉर दैट मैटर ओपोजिशन की किसी जमात ने भी इसको लाइक नहीं समझा कि इस पर तो कमेंट किया जाए, ये कहा जाए कि भी ये बात जो खबर दी थी ये सही है। तो ये आप देख लें DCO पाकिस्तान में अखबार छपते हैं जिस तरह हिंदुस्तान में छपते हैं। अब तो असल बात तो ये है कि क्या कितना क्रेडिबल है अखबार देने वाला, इसकी सदाकत क्या है, अनस के कोई उसको हुकूमत की तरफ से साबित करे या हुकूमत की तरफ से किसी अहलकार को कोट करके ये बात कही गई हो, तो वो तो नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो जाहिर है ये इतनी बड़ी खबर है कि ये सारे अखबार की जीनत बनती है और जिस तरीके से मीडिया इन चीज़ों को छालता है तो वो आउट ऑफ दी वे जाके इससे बात हो रही होती। हाँ, ये जरूर दोनों तरफ से ये आ रहा है कि भी नॉर्थ स्टेट एक्टर जो है ना वहाँ से भी यहाँ से भी दोनों मुल्कों के तल्लुकात को खराब करने के खड़े हुए हैं।
ये थे इस्लामाबाद से स्थानीय पत्रकार एहतशामुल हक।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम।
BBC हिंदी।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एनआईए के अधिकारी तंजील अहमद की हत्या में अभी पुलिस और जांच दल को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। घटना के 3 दिन बाद भी ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है, ना ही हत्या के कारणों के बारे में कुछ पता चल पाया है। पूरे ब्यौरे के साथ समीर आत्मज मिश्र।
तमाम पेचीदा मामलों की गुत्थी सुलझाने में अहम भूमिका निभाने वाले एनआईए के अधिकारी तंजील अहमद की मौत की गुत्थी पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए टेढ़ी खीर बनती जा रही है। बिजनौर जैसे छोटे से शहर में एनआईए के इतने अहम अधिकारी की हत्या करने वालों का पता लगाना तो दूर, 3 दिन बाद भी पुलिस को सुराग तक नहीं मिल सका है। जिले के आला अधिकारियों के अलावा एटीएस, एसटीएफ और एनआईए की टीम भी जांच में लगी है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई है। यही नहीं, मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के एडीजी कानून व्यवस्था दलजीत चौधरी भी कल बिजनौर पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों से जांच रिपोर्ट ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के तमाम अधिकारियों के अलावा लखनऊ क्षेत्र के एसपी असीम श्रीवास्तव भी लगातार बिजनौर में ही डेरा डाले हुए हैं। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि जांच का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन कुछ ठोस जानकारी हासिल नहीं हो सकी है।
अभी तक तो कुछ ऐसा कंक्लूसिव नहीं आया है। पूछताछ उन्होंने की तो जरूर होगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं। अभी उनका वर्क चल ही रहा है और किसी भी चाहे प्रोफेशनल एंगल या पर्सनल एंगल को वो देख रहे हैं, लेकिन किसी एंगल को अभी ऐसा कुछ सच हम लोग ने उनके साथ वो नहीं किया, मतलब जानने की कोशिश नहीं की कि किससे वो पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कोई रिजल्ट अगर ऐसा चाहेगा तो वो जरूर हमें बताएंगे।
तंजील अहमद पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले की जांच से भी जुड़े थे और पिछले दिनों इस सिलसिले में पाकिस्तान से आई टीम के साथ भी वो थे। कई अन्य चरमपंथी घटनाओं की जांच में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए पुलिस इस पहलू से भी मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ की जरूर है, लेकिन उससे कुछ हाथ नहीं लगा है। असीम श्रीवास्तव का कहना था कि जांच मुख्य रूप से राज्य पुलिस ही कर रही है, लेकिन एनआईए उसे पूरा सहयोग दे रही है।
कोई जांच नहीं कर रही है और अगर किसी पॉइंट पे उनको कोई असिस्टेंस, हेल्प या उसकी जरूरत है कोऑपरेशन की, तो वो जरूर उनको प्रोवाइड की जा रही है।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान एडीजी कानून व्यवस्था दलजीत चौधरी ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही घटना की वजह के बारे में पता चल जाएगा। तंजील अहमद की सरकारी जिम्मेदारियों के अलावा पुलिस दूसरे पहलुओं से भी जाँच कर रही है। हालांकि तंजील अहमद के परिवार वाले और उनके जानने वाले कहते हैं कि उनकी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। तंजील अहमद काफी दिनों से दिल्ली के जामिया इलाके में रह रहे थे। जामिया इलाके के एडिशनल एसएचओ सुहेब अहमद तंजील अहमद को स्कूल के दौर से ही जानते हैं।
जहां तक मैंने राघव भाई को जाना है, बहुत ही मिलनसार आदमी है, ऐसा कुछ नहीं। और उनके तो गांव वालों को पता भी नहीं था कि इतने हायर पोस्ट पे उनके गांव का कोई बंदा इतनी बढ़िया डिपार्टमेंट में है। तो ये लगाते थे कि भाई बीएसएफ में ही है, कोई जाती रंजिश का एंगल मैंने भी जैसे मेरी भी बात सुनी है, कहा है, कोई सामने है नहीं मेरे। पिछले साल से मेरी जैसे जामिया में है जॉइनिंग, तो यहाँ बहुत अच्छी तरीके से मुलाकात होती रही है। यहाँ लगभग जो है वेस्टर्न यूपी के बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तो बहुत बिल्कुल माहौल ऐसे वेस्टर्न यूपी का ही होता है, तो खूब आना जाना है, लोग बहुत सीनियर हैं, जूनियर हैं, साथ के बहुत से लोग हैं यहाँ।
इस बीच फोरेंसिक टीम 3 दिन तक घटनास्थल का दौरा करके वापस लौट गई। पुलिस और जांच एजेंसियों के अधिकारी अभी भी इस हत्याकांड के बारे में कुछ सुराग पाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं।
ये थी समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट और अब वक्त हो चला है ये जानने का कि दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कह रहे हैं। हरिता कांडपाल
जी, संदीप जी, सबसे पहले बात पनामा पेपर लीक्स की करते हैं, वो सबसे चर्चा में छाया हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, सम रीजंस में बी वैलिड बट विल प्रोब, ये कहना है आरबीआई के गवर्नर का। उन्होंने कहा कि कुछ जायज़ वजहें हो सकती हैं विदेशों में पैसा भेजने की, लेकिन फिर भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा नवभारत टाइम्स ने छापा है, अमिताभ बच्चन ने कहा है कि मेरा नाम का गलत इस्तेमाल मुमकिन, पनामा केस में उनका भी नाम आया था, उन्होंने ये सफाई दी है। और आइसलैंड के पीएम ने इस्तीफा दिया, ये भी छापा है। और एक बड़ी खबर नवभारत टाइम्स ने और छापी है, बीसीसीआई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, क्रिकेट को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया बीसीसीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और बीसीसीआई ने क्रिकेट के लिए कुछ नहीं कहा, ये अमर उजाला ने भी छापा है। और 160 की स्पीड से दौड़ी गतिमान, 99 मिनट में आगरा पहुंची दिल्ली से, अमर उजाला ने ये गतिमान एक्सप्रेस की तस्वीर के साथ ये खबर छापी है, जो पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कल चली थी उसके बारे में। इसके अलावा द हिंदू अंग्रेजी अखबार ने एक खबर छापी है कि राजस्थान से जुड़ी खबर है, दलित लड़कों को पीटा गया था और उस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
बहुत शुक्रिया। और इसके बाद खेल समाचार आदेश कुमार गुप्त से।
पिछले सप्ताह भारत में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने खिताब को बचाने में नाकाम रही भारत की स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल और पुरुष एकल वर्ग में भी अपना खिताब न बचाने वाले के श्रीकांत अब मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना दमखम दिखाएंगे। साइना नेहवाल तो फिर भी इंडिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची, लेकिन के श्रीकांत तो पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए थे। मलेशिया ओपन में साइना नेहवाल को तीसरी वरीयता दी गई है, जहां पहले दौर में उनका सामना थाईलैंड की निचाओन जिंदा पोल से होगा। उनके अलावा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में दो बार की कांस्य पदक विजेता पीवी सिंधु पहले दौर में चीन की ही बिंग जाओ से भिड़ेंगी। पुरुष एकल वर्ग में के श्रीकांत को कोई वरीयता नहीं दी गई है और वो पहले दौर में थाईलैंड के बुनसाक पोनसाना का सामना करेंगे। उनके अलावा एचएस प्रणय तीसरी वरीयता हासिल जापान के केंटो मोमोता से भिड़ेंगे, जिन्होंने बीते रविवार को इंडिया ओपन भी जीता। पुरुष एकल वर्ग में ही भारत के अजय जयराम भी आज कोर्ट पर उतरेंगे और वो हांगकांग के हू युन का सामना करेंगे। पुरुष युगल वर्ग में मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी रूसी जोड़ी व्लादिमीर इवानोव और इवान सुजुनोव से पार पाने की कोशिश करेंगी। इसी बीच लगातार चर्चा में रही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को 2020 प्रारूप में विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद के रूप में नया कप्तान मिल गया है। इससे पहले 2020 विश्व कप में खराब खेल के कारण आलोचनाओं का सामना कर रहे शाहिद अफरीदी ने कप्तानी छोड़ दी थी। तमाम हालात के बाद पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर वसीम बारी का मानना है कि अब पूर्व क्रिकेटर टीम की बेहतरी के लिए काम करें।
थोड़े टाइम देने से तो कुछ भी तब्दीली नहीं आएगी, तब्दीली के लिए वक्त देना पड़ेगा और हम सबों को एक्स क्रिकेटर्स को कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए, बिकॉज हमारा जो नाम है वो देश की वजह से ही नाम है, हमारा जो नाम है हमारे मुल्क की वजह से ही नाम है और हमें अब टाइम आ गया है कि हमें कुछ वापस भी देना चाहिए।
उधर न्यूजीलैंड में खेले जा रहे हावेज बे कप महिला हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम की हार का सिलसिला थम नहीं रहा है। कल भी उसे पूल बी में दुनिया में पांचवे नंबर की चीनी महिला हॉकी टीम से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारत की रानी ने खेल के 19वें मिनट में गोल कर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई, लेकिन यू क्रियान ने पहले तो बराबरी का गोल दागा और बाद में वांग मेग्यू ने विजयी गोल किया। इससे पहले भारतीय महिला हॉकी टीम न्यूजीलैंड और आयरलैंड से भी हार चुकी है।
खेल समाचारों के बाद एक झलक उन खबरों की जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई होनी है। पिछले दिनों उत्तराखंड में कांग्रेस के 9 विधायक बागी हो गए थे, जिसके बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी आज 36वां स्थापना दिवस मना रही है। भाजपा स्थापना दिवस के मौके पर गुजरात में भाजपा कार्यकर्ता भारत माता गौरव कूच निकालेंगे। दिल्ली सरकार दोबारा शुरू होने वाली ऑड इवन स्कीम से पहले आज से दिल्ली में वायु प्रदूषण की त्रिस्तरीय निगरानी शुरू करने जा रही है। दिल्ली में ऑड इवन स्कीम 15 अप्रैल से फिर शुरू होने जा रही है। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री साजिद जावेद आज मुंबई में टाटा समूह के चेयरमैन साइरस मिस्त्री से मुलाकात करेंगे। भारतीय कंपनी टाटा स्टील ब्रिटेन के अपने घाटे के कारोबार को बेचने की योजना बना रही है, जिससे हजारों कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं।
आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि लोक संगीत जो है उसकी बात ही अलग होती है। यही वजह है कि लोक संगीत ने फिल्मों में अपनी भरपूर जगह बनाई है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब के बाद अब कश्मीर का लोक संगीत भी हिंदी फिल्मों के जरिए सारी दुनिया में पहुंच रहा है। मुंबई से चिरंतना भट्ट की रिपोर्ट।
अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कश्मीर की वादियां हमेशा से ही कला के लिए प्रेरणा बनी हैं और अब इन वादियों का संगीत भी हम तक पहुंचने लगा है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब के लोक संगीत की लोकप्रियता काफी ज्यादा है, लेकिन इस संगीत के बीच अब कश्मीरी संगीत भी अपनी जगह बना रहा है। इंडियन ओशन प्रादेशिक संगीत को नए ढांचे में प्रस्तुत करने के लिए प्रचलित बैंड है। उनके अगले एल्बम तंडानू में भी कश्मीरी बोल के आधार पर एक गीत है। इंडियन ओशन के अमित किलाम कश्मीर से हैं। वह बताते हैं कि इन वादियों को देखने का नजरिया बदलना चाहिए।
डोंट नो वेदर पहुंच रहा है और जगह बना रहा है
वज़ीर-ए-आज़म ना आओ, बिकॉज अभी बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है. व्हाट्स हैपनिंग इज यू नो ऑल अक्रॉस इंडिया यंग ग्रुप्स एंड यंग म्यूजिशियंस आर एक्चुअली फाइनली फाइंडिंग देयर वॉइस एंड देयर नॉट यू नो अवर्स और अशेम्ड टू डू म्यूजिक फ्रॉम देयर ओन रीजन एनीमोर. पहले तो ये था कि या तो इंग्लिश में करेंगे या हिंदी में करेंगे. पहले कूल होते थे तो इंग्लिश में करते थे, उसके बाद फिर हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेजेस आर बिकमिंग कूल. And you see a lot of musicians finally going back to their roots and, you know, bringing out stuff. So as this number of musicians, young people grows, we will have more music from Kashmir hitting.
हमने हिंदी फिल्मों में पहली बार मिशन कश्मीर में कश्मीरी धुन के गाने सुने जो लोगों ने बहुत पसंद किए. आज यूं है कि हैदर और उसके बाद फितूर फिल्म में कश्मीर और उसका संगीत हम तक लाया गया. गायिका विभा सराफ ने जो गाना बचपन में कई बार सुना वह उन्होंने संगीत निर्देशक तापस रेलिया के सहयोग से संगीत में ढाला.
हर मुख बरतल प्रारय मदनो ये बाप हम ते ला गयो.
विभा ने कश्मीरी लोक संगीत के मुख्य प्रवाह में आने के बारे में बताया.
जी एक्चुअली जैसे आप देखेंगे कश्मीरी म्यूजिक की मेजर खासियत उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन से भी रिलेटेड है. कश्मीर इज क्लोज टू सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न एशिया या सदर्न एशिया. तो जो उनका म्यूजिक है वो उन सब जगहों से इंस्पिरेशन और इन्फ्लुएंसेस से बना है. बट ओवरऑल अगर आप देखें तो कश्मीरी म्यूजिक इज क्लोजर टू सेंट्रल एशियन म्यूजिक, विच मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि इट्स क्लोजर टू नॉर्थ इंडिया या लद्दाखी म्यूजिक. कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट्स आर लाइक चक्री, रबाब, सारंगी, संतूर.
लोक संगीत के लोगों तक पहुंचने के कई जरिए हैं, ऐसा मानते हैं संगीत निर्देशक तापस रेलिया. उन्होंने कहा,
मैं हमेशा बोलता हूँ या तो म्यूजिक ट्रैवल करता है या तो म्यूजिशियन ट्रैवल करता है. आर्टिस्ट्स फ्रॉम कश्मीर स्टार्टेड वेंचरिंग आउट टू अदर बिगर सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली. और जब ये आर्टिस्ट निकलते हैं अपने स्टेट से तो वो कल्चर, वो संगीत, वो संस्कृति लेके निकलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने गाना बनाया हर मुख बरतल, इट्स एक्चुअली अ डिवोशनल सॉन्ग. ये एक भजन है कश्मीरी फोक. देयर इज नो वे कि मैं एक्सीडेंटली ये गाना कहीं पे सुन लूं, क्योंकि मैं बैठ के कश्मीरी म्यूजिक क्यों ढूंढूंगा, क्योंकि आई एम फ्रॉम गुजरात, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, मैं काम करता हूँ बॉम्बे में. तो व्हेन विभा केम टू बॉम्बे शी मेट मी एंड शी टुक मी थ्रू अ लॉट ऑफ कश्मीरी फोक सॉन्ग, जिसमें से ये उसने गाया मेरे सामने लाइव एंड आई इंस्टेंटली लाइक इट. एंड आई सेड मुझे गाना तो समझ में बिल्कुल नहीं आया था, सो आई सेड पर मुझे ये प्रोड्यूस करना है. ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है कि रीजनल म्यूजिक, फोक म्यूजिक इज फाइनली गेटिंग द अटेंशन, द बूस्ट, द रिस्पेक्ट दैट इट ऑलवेज डिजर्व्ड.
कश्मीर से लड़कियों का एक बैंड भी बना लेकिन उसे बैन कर दिया गया. हमने संगीत से जुड़े जिन कलाकारों से बात की वह सब यही चाहते हैं कि वादियों और खूबसूरत नजारों से प्रभावित यह संगीत के जरिए लोग कश्मीर को और समझे और जाने और उसके प्रति देखने का दृष्टिकोण बदले. चिरंतना भट्ट, बीबीसी, मुंबई.
और इसके साथ ही वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का. कार्यक्रम के समापन से पहले सुनते हैं विश्व समाचार एक बार फिर हरिता कांडपाल से.
बीबीसी समाचार. पनामा पेपर लीक्स में नाम आने के बाद आइसलैंड के प्रधानमंत्री सिगमंडर गुन लॉगसॉन ने इस्तीफा दिया. मोजाक फोंसेका के दस्तावेज में फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो का भी नाम आया. उनका नाम रिश्वत लेने वाले व्यापारी को कॉन्ट्रैक्ट देने के मामले में आया है. तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोआन ने कहा है कि चरमपंथ का समर्थन करने वालों की नागरिकता छीन ली जानी चाहिए. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत ने कीनिया के उपराष्ट्रपति विलियम रूटो और एक पत्रकार पर मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों को खारिज कर दिया है. नाइजीरिया में सबसे वरिष्ठ नेता बुकालो साराकी के खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया है. उन पर चोरी की रकम से संपत्ति खरीदने और अपनी संपत्तियां छिपाने का आरोप है. लीबिया की स्वघोषित सरकार नेशनल सल्वेशन गवर्नमेंट ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार को सत्ता सौंपी. कहा देश में और खून खराबा रोकने के लिए छोड़ी सत्ता. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जेकब जुमा संसद में महाभियोग पर हो रही वोटिंग में बच गए हैं. बीबीसी समाचार.
नमस्कार भारत में इतना ही. कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे थे राजेश चौहान. ठीक एक घंटे के बाद विश्व भारती में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।